दुनिया असत्य। हम लोग को कहने का है कि अगर ब्रह्म सत्य है तो दुनिया असत्य कैसा होगा। वेदांत सूत्र में ये विषय में पहली चर्चा की है कि अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, ये जो मनुष्य जीवन है जानवर से क्या अंतर है। अंतर यही है जो कुत्ता जो है केवल भोगता और खाता है पीता है बच्चा पैदा करता है और कुछ दिन बाद मर जाता है। आहार निद्रा व्यायाम मैथुन सामान्य में तत्वी नाना मनुष्य और पशु में इस चार विषय में कोई फर्क नहीं। कुत्ता भी खाता है मैं भी खाता हूं और कुत्ता भी सो जाता है मैं भी सो जाता हूं और कुत्ता भी बच्चा पैदा करता है स्त्री संभव करता है मैं भी करता हूं और कुत्ता भी भयभीत होता है दुश्मन से और मैं भी भयभीत होता हूं। तो क्या फर्क है? फर्क इतना ही है कि मनुष्य समाज में ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, जो भगवान क्या चीज है, दुनिया किस तरह से चल रहा है, इसका कोई मालिक है कि नहीं, कोई चलाने वाला है कि नहीं, ये सब विषय मनुष्य हृदय में ये सब प्रश्न उदय होता है। और कुत्ता जो है ये सब नहीं जानते, इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं। इसलिए शास्त्र में बताते हैं जस्या को बुद्धि कुनपेति धाते सधिक कलत्रादीशु भौम इज्जति जतीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचि जनेषु अभिज्ञेश सैव भोखर। आत्मबुद्धि, ये जो शरीर है ये शरीर त्रिधातु कफ पित्त वायु, आयुर्वेद का अनुसार इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कफ पित्त वायु। तो ये कफ पित्त वायु का एक संयोग है, इसको कोई समझता जाओ आत्मा है देहात्म बुद्धि, और उसी बेसिस पर उसी भी आधार पर वो अपना काम करते हैं। तो उसको शास्त्र से बोलता है सैव गोखर, गो का अर्थ होता है गाय गाय और खर का अर्थ होता है गधा। तो ये देहात्म बुद्धि जो है ये कोई मनुष्य का बुद्धि नहीं है। मनुष्य का बुद्धि तभी खुलती है जब वो ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं और समझते हैं कि मैं ये शरीर नहीं है, मैं ब्रह्म वस्तु अहं ब्रह्मास्मि। ये मनुष्य जीवन जब तक ये प्रश्न उदय नहीं होता है, जब तक ये ज्ञान नहीं होता है तब तक वो पशु ही है। इसलिए मनुष्य समाज में शिक्षण देने के लिए व्यवहार है, कोई जगह में जाइए सभ्य समाज में कोई धर्म का विचार है, क्योंकि धर्मे न हीना पशु भी समाना। जिस समाज में धर्म की चर्चा नहीं है, धर्म क्या चीज है, भगवान क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है, ये सब प्रश्न नहीं होता है, वो समाज समझ लीजिए वो कुत्ता भेड़ी का ही समाज है। तो कुत्ता भेड़ी लोग जिस तरह से बातचीत करते हैं तो वो भगवान कृष्ण खुद समझा रहे हैं डिमिस्पेक्टिव। तो उसका क्या बोल रहा है, पहले ही कहते हैं असत्यम, ये जो दुनिया है ये असत्य है। असत्यम अप्रतिष्ठं ते जगदाहु अनिश्चरम, और अपरस्पर संभूतम किमन्नत कामहैतिकम्। आजकल बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग वो अपना एक थ्योरी बताए एक्सीडेंटल थ्योरी। असल में वो लोग विशेष विश्लेषण करके उनको समझा नहीं सकते हैं और ये थ्योरी निकाल दिया है ये एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से कोई काम नहीं होता है। जगदाहु हमें अहित कम, कोई हेतु है नहीं, ऐसा कुछ काम हो ही नहीं सकता दुनिया में, सब विषय में हेतु है। तो भगवान कहते हैं कृष्णा कृष्णा सु भगवान स्वयं, हमारा वैदिक शास्त्र में जो भगवान का विषय है समझने के लिए जो प्रयत्न किया है उसमें यही कंक्लूशन दिया है, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता श्रीमद् भागवतम और वेदादि शास्त्र में यही स्वीकार जो विषय है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये श्रीमद् भागवत में अनेक प्रकार जो भगवान का अवतार है उसको सब सब गुण और उसका कार्यक्रम सब एक लिस्ट दिया हुआ है और आखिरी में ये सिद्धांत क्या कि ये जो सब लिस्ट आपको बताया गया है इति चांस कला पुंस, इति चांस कला पुंस, और इसके भीतर में जो नाम है कृष्ण वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान अवतार और अवतारी। तो इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कार। ईश्वर ईश्वर का अर्थ होता है जो हुक्म देने वाला, तो हुक्म देने वाला अल्प विस्तर सभी हम लोग, इधर हमारा चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं वो हुक्म देते हैं राज्य चलाने के लिए, बाकी उनको भी कोई हुक्म देता है, ये बात नहीं है जो वही परम हुक्म देने वाला है नहीं। इसी प्रकार आप देखिएगा एक हुक्म देने वाला है वो हुक्म देता है और दूसरे का हुक्म मानता है, ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेगा जो केवल हुक्म देता है और हुक्म किसी को मानता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये ब्रह्मा तक आप पहुंच जाएगी, खाली दुनिया में नहीं और जो सब प्लैनेट है देवता लोक है आखिरी में ब्रह्मा जी है वो भी हुक्म मानते देने ब्रह्म रिदा आदि कपये मुहंत सूर। ये ब्रह्मा जी है इज द फर्स्ट लिविंग क्रीचर विद इन दिस यूनिवर्स, वो भी हुक्म मानते। और फिर आगे बढ़िए ब्रह्मा जी का ऊपर विष्णु है, विष्णु जी का ऊपर महाविष्णु है, महाविष्णु का ऊपर नारायण है, नारायण का ऊपर शंकरसन है, इसी प्रकार सब शास्त्र में सब विचार है एक एक हुक्म देने वाला। और नीचे तो बहुत ही है, हम ये किसी हमारे शिष्य लोग का ऊपर हुक्म देते हैं, आप लोग सब अपना बिजनेस में फैक्ट्री में हुक्म देते हैं, घर में हुक्म देते हैं, ऐसा इस हिसाब से सभी ईश्वर, इसमें कोई विवाद नहीं है, ईश्वर सभी है। आजकल जो थी सब भगवान है, हाँ भगवान है मान लिया ईश्वर है, परंतु शास्त्र में बोलता है जो ईश्वर परम कृष्ण, छोटे मोटे हुक्म देने वाला ईश्वर सभी है। वो उसमें कोई विवाद नहीं है, परंतु परमेश्वर, परमेश्वर का अर्थ होता है जिसका ऊपर और कोई हुक्म देने वाला है नहीं, वो जो ईश्वर है वो कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, और उसको विग्रह जो शरीर जो है वो सच्चिदानंद, शास्त्र से प्रमाण लेना चाहिए सचित आनंद। उनको शरीर जो है ये हमारा ऐसे शरीर नहीं, हमारा शरीर जो है ये सच्चिदानंद नहीं है, पहले बात है ये सत नहीं है, ये कुछ दिन टिकेगा 20 50 100 ज्यादा से, इसलिए असत सत नहीं। हाँ, और चीत का अर्थ होता है गैर। हाँ, तो ज्ञानवान भी नहीं है। बहुत सी चीजें हमको सीखना है, अभी तक सीख रहा हूं। तो चीत भी नहीं है, सत भी नहीं है, और आनंद तो है ही नहीं। आनंद कैसे होगा? जब तक एक शरीर है, आपको ये जो प्राकृतिक तीन प्रकार तकलीफ है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैवी, ये तो आप सहन कर नहीं पड़ेगा। अब देखिए, इधर फिर से पंखा हिला रहे हैं, क्यों? न गर्मी है, सहन नहीं होता, ये आधिदैविक है। इसी प्रकार मन से, शरीर से जो दुख होता है, उसका नाम आध्यात्मिक। दूसरे आदमी, दूसरे जानवर, दूसरे कीट पतंग, सभी दूसरे को तकलीफ देता है, दूसरे को खा जाता है। ये जगत का नियम है, जीव जीव से जीवनम, तो उसका नाम है आदि भौतिक। और ऊपर वाला देवता लोग तकलीफ देता है, कभी अनावृष्टि हुई है, कभी भूमिकंप हो गया, कभी एपिडेमिक हो गया, इसमें कोई हमारा हाथ नहीं है। ये हर एक प्रकार के, जब तक ये शरीर है, ये तीन प्रकार के चिताप जंतन, उसको कहते हैं चिता, तीन प्रकार के जो ताप है, इसको आपको भोगने ही पड़ेगा। तो आनंद कहाँ है? ये जो शरीर है, सद भी नहीं है, ज्ञानवाय भी नहीं है, और आनंद नहीं है। और भगवान का शरीर क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। इसलिए शास्त्र में जहां बताया गया है निराकार, निराकार अर्थ नहीं कि उनका आकार नहीं है, ये बात नहीं, आकार जरूर है, बाकी वो आकार ऐसी आकार नहीं, हमारा जैसा आकार है, आपका जैसा आकार है, वो आकार नहीं। विग्रह, विग्रह का अर्थ होता है मूर्तिमान। भगवान का मूर्ति है नहीं, कैसे? भगवान परम पिता है, हमारा, हम जो है, हमारा पिता का मूर्ति, पिता की मूर्ति है। हिज पर्सन देयरफॉर आई एम ऑल्सो पर्सन। अब वो पिता का पिता, पिता का पिता, और जाइए आगे ब्रह्मा जी, उसके ऊपर जाइए, उसके ऊपर जाइए, परम पिता है, उसको शरीर है नहीं, ये कौन सी युक्ति है? जरूर है, जैसा आप अपने परदादों को देखा नहीं, बाप का बाप, उसका बाप, उसको बाप, उसका माने निराकार है, कोई परदादा थे उसको ये निराकार आप कहे? नहीं, जो भगवान वो निराकार नहीं है। निराकार इसलिए है नहीं, हमारा जैसे आकार नहीं है, उनकी आकार है सच्चिदानंद विग्रह। इसलिए शास्त्र में कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, वो कृष्ण को साधारण ऐसा मनुष्य न समझा। इसलिए भगवान मना किया है, भगवान अब जानती मान मूढ़ा मान सिंतन मास, क्योंकि मैं मनुष्य ऐसा एक शरीर धारण करके लोग के उपकार के लिए मैं आता हूं, जो गधे होते हैं, मूढ़ा, मूढ़ा का अर्थ होता है गधा, वो हमको मनुष्य समझते हैं। अब जानती मांग मूढ़ा, गधे को क्यों उपमा दिया है? जो गधे, उसके हिसाब किताब ठीक नहीं है, उसको गधा बोला जाता है। जैसे गधा धोबी का घर में रहता है, वो सवेरे तीन टन कपड़े उसको पीठ में लाद देता है, वो घाट में ले जाता है, और उधर थोड़ा घास देता है, और वो दिन भर में घास खाता है, फिर शाम को तीन टन कपड़ा ले आता है। तो उसको गधा क्यों कहा जाता है? जो देखता नहीं, घास तो हमको सब जगह में मिल सकता है, ये धोबी का घर में मैं क्यों इतना कपड़ा लाता हूं, ये कपड़ा भी हमारा नहीं है, उसका नाम है गधा। गधा जो समझते नहीं, जो हमारा दुनिया में इंटरेस्ट क्या है, और दिन भर हम परिश्रम कर रहे हैं, किस लिए मैं परिश्रम कर रहा हूं, क्या हमारा उद्देश्य है, ये जो समझता नहीं, केवल परिश्रम करता है, उसका नाम है गधा। तो इसलिए शास्त्र में कहते हैं मूढ़ा। और एक जगह में भगवान, बहुत जगह मूढ़ा ये शब्द को व्यवहार किया है, और एक जगह कहते हैं नमांग दुष्कृत न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माया अपहृत ज्ञाना आसुरी भावमासु। जो गधे लोग आसुरी भाव आश्रित है, कोई असुर का विचार ये 16 चैप्टर में किया जाता है, तो उसका क्या लक्षण है? कहते हैं नमांग प्रबद्धंती, भगवान को स्वीकार नहीं करते। ये पहले इसका क्वालिफिकेशन है भगवान क्या नमांग प्रबद्धंती मूढ़ा दुष्कृतिना, नमांग दुष्कृतिना मूढ़ा प्रबद्धंती। क्यों न मूढ़ा लदा और नराधमा, नराधमा का अर्थ होता है नर, जैसा हम लोग मनुष्य है सर ये नर, तो मनुष्य जीवन में भगवान को चाहे तो समझ सकता, उनका ये फैसिलिटी है, इतना ही फर्क है जानवर से और मनुष्य से। मनुष्य अगर चाहे अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, वो अगर जिज्ञासा करे कि ब्रह्म वस्तु क्या है, भगवान क्या है, ये सब शास्त्र है, क्यों शास्त्र, ये शास्त्र किस लिए बनाया गया, ये भगवद गीता श्रीमद्भागवत चैतन्य चरितमृत वेद पुराण अनेक प्रकार शास्त्र है, ये हमारा भारतवर्ष की संपत्ति है, इसलिए चैतन्य महापुरुष बताया है कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हईल जा, जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ बड़ा पुण्य से होता है, साधारण नहीं है। हम तो देख रहे हैं सारा दुनिया में घूम करके, अभी तक इतना पतित हम लोग हो गए, तब भी भारतवर्ष का जो कल्चर है सबसे ऊंचा है, ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तीसरे चैतन्य महापुरुष बताया है भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हईल जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, ये चैतन्य महापुरुष का मिशन है। ये जो चैतन्य महापुरुष का मूर्ति आप लोग देख रहे हैं, इनका यही मिशन है, जो भारतवासी जो है ये भारत भूमि में जिसका मनुष्य जन्म हुआ है गधा का नहीं, उसके लिए कार्य है जो अपना जीवन सार्थक करो, क्योंकि इधर सब शास्त्र है, वेद पुराण वेदांत रामायण महाभारत भगवद गीता अनेक शास्त्र है, एक उपनिषद है 108, अष्टादश पुराण है, रामायण है, महाभारत भगवद गीता है, इसको सब पढ़ के सुन सुन करके जीवन सार्थक कीजिए। हमको बाहर में क्या सीखना है? एक जगह में चैतन्य चैतन्य में बताया है ये अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, अतएव कृष्ण वेद पुराण कोरिला, ये जो जीव भगवान को भूल गया है, कब भूल गया उसका हिस्ट्री पता नहीं चलता, बाकी भूल गया। अनादि, अनादि का अर्थ होता है जब से सृष्टि हुई है उससे भी पहले, अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूल गया, भगवान को भूल गया, और भगवान को भूल गया उसको याद देना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, इसलिए अतएव कृष्ण वेद पुराण करी। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो आपको भारतवर्ष में जन्म है ये सब चीज से पढ़ करके सुन करके, पढ़ने भी नहीं होगा सुनने से भी काम चलेगा, जैसा आप लोग सुन रहे हैं और हम लोग सुना रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये भक्ति है। तो कुछ व्यक्ति तो श्रवण करते हैं और कुछ व्यक्ति बोलते हैं, तो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों का फायदा, चिन्हतांग सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, सुनने वाला कभी पुण्य होगा और बोलने वाला कभी पुण्य होगा, ऐसी चीज है। इसलिए अभी तक इतना गिरे हुए होते हुए भी भारतवर्ष में कहीं हम लोग ये फेस्टिवल मनाते हैं, 10-20 हजार 25 हजार 30 हजार सब आदमी आते हैं, क्योंकि उसका खून खून में है भारतवर्ष में ये पुण्य भूमि में जन्म होने का कारण, उसको भगवत भक्ति खून खून में है, उसको जगाना चाहिए। अब कुछ ये चैतन्य महापुरुष का मिशन है, जब भारत भूमि ते मनुष्य जन्म ही ल जा, तो सबके लिए है, ये नहीं है एक भक्ति वेदांत स्वामी बाहर जाके परोपकार कर, आप लोग सब जाइए, इसका कस्टमर बहुत है, सब आग्रह से ले रहे। ये जो यूरोपियन अमेरिका इन सब बालक लोग हमारा साथ घूम रहे हैं, इसको हम कुछ घूस नहीं दिया। ये जो हमारा नौकर चाकर ऐसा काम करता है, कुछ उसको मिला है तभी तो हमारा साथ है, नहीं तो हमसे उनको क्या लेना। एक तो इंडिया हम लोग पुअर कंट्री है और हम तो संन्यासी भी मांगे नहीं। वो लोग आप समझ रहे हैं कि यदि कोई वस्तु है तो भारतवर्ष में, ये बात सही है। हाँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारतवर्ष से दूसरे और कंट्री का ऐसे सीखना नहीं चाहिए कि किस तरह से और दूसरे को एक्सप्लॉइट किया, लूट किया। नहीं, परोपकार, भारत भूमि ते मनुष्य और जन्म ही लगा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। पहले अपना जन्म सार्थक कीजिए, ये सब शास्त्र पढ़िए, जब आपने हृदयंगम कर लेंगे तभी तो परोपकार करेंगे, जब आपका बस कुछ है ही नहीं तो परोपकार क्या करेंगे। इसलिए चैतन्य हम कहते हैं जो भारत भूमि ते मनुष्य जन्म ही लगा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। और भी बताया है कि पृथ्वी ते आछे जतो नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। ये भी चैतन्य महाप्रभु बताया है, सारा दुनिया में जितने गांव हैं और जितना शहर है, सब जगह में हमारा नाम प्रचार होगा। ये भविष्यवाणी ये हो रहा है। ये चैतन्य महाप्रभु का विषय आपने अभी आपने सामने ही देखा है कि हम लोग 102 केंद्र बनाए हैं सारा दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और जापान में, अफ्रीका में, सब जगह कोई जगह छोड़ा नहीं। तो अकेले सिंगल हैंडेड ये सब किया गया है। यदि सब आप लोग सब अपना जीवन सार्थक करके आप दुनिया में ये कल्चर प्रचार करेंगे तो देखिएगा आपका भारतवर्ष का सम्मान कितना बढ़ रहा है। ये उचित है। इफ यू लव योर कंट्री, इफ यू लव योर कल्चर, यू शुड टेक अप दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट एंड प्रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट इज व्हाट, यस, ये चैतन्य आपका मिशन है। तो हमारा कहने का यही है कि डोंट नेग्लेक्ट, आप इसको अवहेलन न कीजिए। ये आप लोग से प्रार्थना है, आप चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर है चाहे बिजनेसमैन है, ये जो कल्चर है कृष्ण कॉन्शियसनेस उसमें कोई आपको मुश्किल नहीं है। ये भी चैतन्य महाप्रभु बताए, क्या बताए कि आमार आज्ञाएं गुरु होइया तारो एई देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हमारी आज्ञा से आप लोग सब गुरु हो जाए। तो कोई कहेंगे जो हम कैसे गुरु होंगे, हमारे पास तो ऐसा विद्वान, मैं ऐसा विद्वान भी है नहीं, कुछ पढ़े सुने भी है नहीं, हम कैसे गुरु बन जाए। तो चैतन्य महाप्रभु आश्वासन दे रहे हैं उसमें कोई मुश्किल नहीं है, गुरु बनो। किस तरह से, जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, केवल इतना ही सीख लो, ज्यादा उस्ताद नहीं, जो भगवान कृष्ण जो बताए हैं उसको सुना दो बस। बस हम गुरु हो गए। गुरु होने में कोई मुश्किल नहीं है, यदि जो परम गुरु है भगवान कृष्ण है खुद आकर के समझा रहा है। अब क्या और ज्यादा चाहते हैं, भगवान क्या है हम लोग सब सोचते हैं, अनेक प्रकार दार्शनिक विचार करते हैं, अरे भगवान तो खुद आकर के अपने को बताए हैं, उसका क्यों नहीं सुनते हैं, उसमें क्यों उस्तादी करते हैं। आप जो भगवान बताते हैं उसको मान लो। भगवान कहते हैं मत्त परतरम नान्न किंचिज अस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर के और कोई परतत्व है। और भगवान जब इधर मौजूद थे, जब तक दिखा भी दिया है, भगवान कृष्ण से कोई भी बर नहीं सका। उनके जन्म से शुरू करके केवल असुर लोग उनको मारने के लिए तैयार। उनको जन्म का पहले ही उनको मामा जी कंस महाराज वो हुक्म दिया नौकर चाकर, देखो जी जब कृष्ण का जन्म हो उसी वक्त बच्चा को ले आना मार डाले। तो वहां से शुरू करके फिर अघासुर मघासुर पुतोनाथ न जाने कितने कितने आस आखिरी में कम से ही भगवान की धारा होता है। तो भगवान को कोई नहीं मार सकते। ये जो आजकल चल रहा है जो भगवान को उड़ा दो, भगवान कैसे उड़ा दे हा? अभी सुना कल कोई एक्सीडेंट हो गया 95 क्लास में मर गए। तो भगवान का जो नियम चलेगा उसमें आप कैसा उसका ऊपर जाएंगे? ये मूर्ता है, मूरा ना भी जानती माँ में बप्पर हो बहन, उसको मूढ़ा कहा जाता है, गधा का जो भगवान को नहीं मानते। तो उसका जो लक्षण है वो गधे लोग का, उसका लक्षण भगवान खुद बताते हैं कि असत्यम प्रतिष्ठन्ति जगदापु अनिश्चरम। जो उसको पहली बात यही है जो ये दुनिया असत्य, ये दुनिया असत्य है और केवल मैं सत्य है, मैं जो बोल रहा हूं वही सत्य है और सब असत्य है। नहीं है, दुनिया असत्य नहीं है, सत्य है। यदि दुनिया असत्य है और ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म अर्थ होता है जन्मादर्श जतः, ब्रह्म का अर्थ होता है वेदांत में ये सब विचार किया गया, जहां से सब चीज का जन्म होता है, दी ओरिजिनल सोर्स ऑफ एवरीथिंग दैट इज ब्रह्म। अर्थात तो ब्रह्म जी के साथ ब्रह्म क्या वस्तु है ना, जन्मादर्श जतः, जहां से ये भागवत पहले यही सूत्र से शुरू, जन्मादर्श जतः अन्नयात इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञा सराट, ये सब विचार किया गया है। जो जो ओरिजिनल सोर्स, जो मुख्य सोर्स है, उस है वो क्या चीज है, तो उसमें वो कोई जड़ वस्तु है कि जीवन वस्तु है, ये सब विचार किया है। तो विचार करके निश्चित किया गया है नहीं अभिज्ञा नहीं, जड़ वस्तु नहीं है, अभिज्ञ ज्ञानी है, नहीं तो कैसे सृष्टि करेंगे। जन्मादर्श जता अन्य उसको सब चीज मालूम होना चाहिए, जैसे कोई इंजीनियर है एक बड़ा भारी पुल बनाए उसको सब मालूम है, वो ऑफिस में बैठे हुए हैं भाई जानते हैं कहाँ कहाँ एक एक स्क्रू लगा है वो सब जानते हैं। इसलिए शास्त्र में कहते हैं अन्नयात इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञा सराट, जैसे हमारा शरीर है, मैं कहता हूं हमारा शरीर है, हम कुछ नहीं जानता है ये शरीर का विषय, हम खाते हैं किस तरह से अन्न पेट में जाता है, किस तरह से वो खून बनता है, किस तरह से मल बनता है, मूत्र बनता है, फिर किस तरह से हार्ट में जाता है, कुछ नहीं जानते खा ही लेते हैं। डॉक्टर लोग कुछ कुछ जानते हैं, वो भी अभिज्ञ नहीं है, संपूर्ण नहीं है, परंतु जो भगवान है जो कि दुनिया को सृजन किया है वो अन्नयात व्यतिरेकश्च अभिज्ञा, वो अन्नय भाव से व्यतिरेक सब कुछ जानते हैं, उसका नाम है भगवान। तो ये सब विचार है। तो जो मूर्ख लोग है वो कहते हैं असत्यम, इतना भारी दुनिया जिनने बनाया है, हम लोग एक मकान बनाते हैं थोड़ा सा एक मकान समझ लीजिए खूब अच्छी तरह से बनाया, कोई फ्रेंड आके कहते हैं हाँ जी तुम बड़ा अच्छा मकान बनाया, तो हम बड़ी खुशी हो जाते हैं। और कोई आके कहते हैं अरे तुम मकान बनाया है ये सब असत, तो हम डिस्करेज हो जाए, लेकिन इसका व्यक्ति हम इतना पैसा खर्च किया, इतना मेहनत किया और ये बोलता है असत, तो क्यों असत्य? जो भगवान को मानता नहीं, जो भगवान को समझता नहीं, वो बोलेगा ये दुनिया असत, असत नहीं है, इसमें कितना कारीगरी है। जो समझदार है वो देख सकते हैं कि किस तरह से सूर्य उदय होता है, किस तरह से चंद्र उदय होता है और किस तरह से समुद्र है, भूमि रप अनलो वायु अंग बुद्धि मन, ये सब कारुकार जो सब भगवान बनाए ये सब असत्य है। और भगवान अगर ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म से असत्य कैसे निकले? असत्य ही है जो हम जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, ये आपसे आप बन गया है, वो चीज असत्य नहीं, तो भगवान है, भगवान की कारीगरी इसमें है, ये जो समझता है वो जरूर करेंगे। ये नहीं कहना चाहिए ये असुर लोग कहते हैं असत्यम, ये फॉल्स है, हम लोग फॉल्स नहीं कहते हैं, दो विचार है, एक मायावादी विचार और एक वैष्णव विचार। मायावादी लोग कहते हैं जो दुनिया ब्रह्म जगत असत्य, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, नहीं मिथ्या नहीं, तू भगवान भी कहते हैं। असत्यम कौन कहते हैं? वो असुर लोग कहते हैं असत्यम ही। भगवान खुद कहते हैं भूमि रपा नल वायु हंग मना बुद्धि वच प्रकृति में भिन्ना असदा। हमारी प्रकृति है, हमारी एनर्जी है, मैं इसको सृजन किया है। तो असत्य कैसा होगा? उसका कुछ मतलब है भगवान? ये जो भौतिक जगत बनाने वाले, इसकी इसमें भूमि चाहिए और पानी भी चाहिए और जमीन भी चाहिए, आग भी चाहिए, हवा वायु भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये सब भगवान कहते हैं प्रकृति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये आठ प्रकार की जो प्रकृति है ये हमारी एनर्जी से ये बनी हुई है। और फिर भी बताते हैं अपरायम, ये जो आठ प्रकार की प्रकृति है ये अपरा है, निकृष्ट, इससे आओ एक आगे बढ़े हुए प्रकृति है। अपरायम इतस्तु विद्धि में प्रकृति परा, और एक परा प्रकृति है। वो क्या चीज है? जीव भूत महाभाव, वो जीवात्मा। जैसे हम लोग है, जड़ से हमसे फर्क है, क्योंकि एक जड़ वस्तु जो है उसका ऊपर हमारा कंट्रोल है। हम कहीं से ईंटा ले आते हैं, पत्थर ले आते हैं, लकड़ी ले आते हैं और उसका सा सुंदर एक मकान बना लेते हैं। तो मैं भी एक प्रकृति है और ये जड़ भी एक प्रकृति है, परंतु मैं जो जीवात्मा है ये परा प्रकृति। ये भगवान सचिता से समझे अपरायम, ये अपरा निकृष्ट है। और ये जो प्रकृति है, तो हम लोग प्रकृति है, पुरुष नहीं है। पुरुष तो भगवान है, एकमात्र पुरुष, पुरुष एकमात्र। जैसा अर्जुन भगवत गीता के सुन करके स्वीकार किया, पुरुषम शाश्वतम पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम। आप जो है आप पुरुष और सब प्रकृति। प्रकृति का अर्थ होता है भोग्या, और पुरुष का अर्थ होता है भोग, भोक्ता। भगवान खुद कहते हैं भोक्तारम जगत तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुरिदम सर्वभूताना ज्ञाता माम शांति मिच्छति। हम लोग सब शांति चाहते हैं, ताकि शांति मिलने का जो रास्ता है वो हम लोग नहीं जानते। वो भगवान खुद बताते हैं जो आप शांति चाहते हैं तो यही शांति का पथ है। क्या? जो भोक्ता जो है पुरुष, वो भगवान है। भोक्तारम जगत अवसाम सर्वलोक महेश्वरम, और मैं सब लोग का मालिक। ये जो हम लोग मालिक बनते हैं ये फॉल्स, ये सत्य नहीं है। जो भगवान बोलता है जो मैं मालिक है, हम लोग आते हैं समझ लीजिए हम लोग इंडियन है, हम समझते इंडिया हमारा है। कितना दिन तक इंडिया हमारा रहेगा? जब तक ये शरीर, बस शरीर खत्म हो गया कि इंडिया खत्म होगा? तो इंडिया तो रह गया। हमें पेरिस में एक पार्क में देखते थे नेपोलियन एंड फ्रांस इक्वलाइजिंग। हम देख हम उनको पूछा जो फ्रांस मौजूद था, नेपोलियन किधर चला गया? तो कोई जवाब नहीं हुआ। ये सब चल रहा है। इसलिए जो भगवान जो बोलते हैं जे भोक्तारम जगत अवसाम सर्वलोक मालिक, भगवान की मालिकाना तो रह जाता है। और हम आते हैं दो चार दस रोज बीस रोज नहीं दस बरस बीस बरस पचास बरस सौ बरस नहीं मिलियन सब ईयर्स। ब्रह्मा जी रहते हैं मिलियन सब ईयर्स। तो इसका माने वो मालिक नहीं है, मालिक तो भगवान है। हम लोग आते हैं धर्मशाला में, आया दो चार रोज ठहरा फिर चला गया, ये धर्मशाला हमारा हो गया क्या? ये सब भ्रम है, ये सब भ्रम है, दुनिया में चल रहा है सब भगवान के। ईशावास मिदम सद्भम, सब कुछ भगवान का। ये सेंस जगाना चाहिए। इसका नाम है कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। इसके लिए हम लोग थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, आपसे निवेदन है, ये भारतीय कल्चर है, आप लोग सब ज्वाइन कीजिए। ये कोई सेंटिमेंटल नहीं है, केवल बोलने वाला बात नहीं है, शास्त्र प्रमाण है। हम लोग 84 किताब लिख के आपका सामने हाजिर किया है। आप शास्त्रों से पढ़िए, विज्ञान से पढ़िए, और ये मूवमेंट को अच्छी तरह से सीरियसली लीजिए। और चैतन्य महाप्रभु जैसे बता रहे हैं कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है लो जा। हम लोग जाते हैं परदेश में भीख मांगने के लिए, क्यों भीख मांगे, आप कुछ दीजिए, आपके पास चीज है, क्यों आप भीख मांगने जाते हैं। अपन धन बिलाए दिए भिक्षा मांगे पड़े, अपना धन तो लुटा दिया और दूसरे के पास भीख मांगते, ये उचित नहीं है। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट बताते हैं, जहां आपका पास चीज है वो चीज आप लीजिए, आपका जीवन सार्थक कीजिए और दुनिया में दीजिए, परोपकार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।
जय श्री प्रभुपाद। गुरु जी के भाषण के बाद
किसी भाई या बहन को उसने कोई शंका है तो वो जहां आगे आकर जो बोले हैं सिर्फ उसी के ऊपर में आगे यहां आकर प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन प्रश्न उसी के ऊपर में होना चाहिए। वो जो बोले हैं जिसको समझ नहीं है तो उनके लिए दो मिनट हैं, कोई भी व्यक्ति यहां आगे आकर प्रश्न पूछ सकता है। इसका मतलब कि आप लोग सब सहमत हैं जैसे वो बोले हैं उनके मुताबिक, तो अभी आरती होगी तो आप लोग सब आरती में जैसे संकीर्तन होगा उसमें आप लोग भी भाग लें और भगवान का जीवन स्थापित करें, और उसके बाद में आप लोग को बहुत सुंदर चित्र लाइव दिखाए जाएंगे। जैसे गुरु महाराज जी ने बताया कि हरे कृष्णा मूवमेंट जो है बाहर के मुल्कों में और आगे चतुर्वेदी काल में भी बताया था, और आगे आपको चित्रों में स्पष्ट करके बताएंगे कि बाहर के मुल्कों में लोग इसको कैसे अपना रहे हैं और क्यों अपना रहे हैं और कहां कहां। अभी तो आरती होगी, आप लोग सब उसमें भाग लीजिए और ऐसे बैठे रहना है। हरे कृष्ण।
Not quite clear about the Satchinder Nanda issue. As such, Satchinder Nanda is Mama now. As such, Satchinder Nanda has a form or not?
Yes, form. Just and like you have got form, Asit, Asat, Asit, Nirananda. Iska ulta bhi ek form hota hai, Satchitananda.
No, but like it is, but like
the... That when you come to understand, then you know. It is not, it cannot be explained in 1 minute. It requires some education and some understanding. But you have to accept the statement of the Shastra, that Vigraha, Satchidananda. Just like you know that I have got mind and you have got mind. Can you see my mind?
No,
no, just like you cannot see it, but you can perceive. That I have got money, you have got money. I have got intelligence, you have got intelligence. But what is that intelligence? Can you see? Something cannot be seen, but it can be perceived. Therefore, our knowledge is acquired by perceiving. Vedas means Shruti. You have to hear and perceive. You cannot see at the present moment. You haven't got the eyes to see.
Can I not say that Satchidananda is light of consciousness?
Whatever it may be, that's like I have already given you the example, that the gross thing you can see. Yes, consciousness.